समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम आज के अंक में याद करेंगे जिनकी पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार सरफिरोजी, अ हार्टफेल्ट हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। दिस इज शगुन चोपड़ा विद माय को होस्ट सरफिरोजी एंड वी हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच वी विल अनरैवल इन आवर प्रोग्राम टुडे। वी हैव न्यूज, वी हैव डिस्कशन सेगमेंट डेडलाइन इंडिया एंड इट हैज two topics of discussion today. We also have reports, capsules, and we'll pay our tributes. All of this over the next 30 minutes, but we'll begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेहदीगंज में 3,800 करोड़ रुपए से अधिक की 44 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, काशी अब केवल प्राचीनता का प्रतीक नहीं बल्कि विकास का एक आदर्श मॉडल भी है।
Prime Minister visits Anandpur Dham in Ashok Nagar district of Madhya Pradesh.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अमरीकी नीति में बदलाव का हर क्षेत्र में गहरा तकनीकी प्रभाव पड़ा है।
Met Department issues alert for increased activities of lightning and thunderstorm in several parts of Bihar for next 5 days.
और चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से।
And now, listeners, it's time for our segment Dateline India, and today we will talk about, firstly, World Parkinson's Day.
जी शगुन, हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पार्किंसंस के उपचार के बेहतर तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे पीड़ित लोगों की सहायता करना है। शगुन, इससे पहले कि हम पार्किंसंस दिवस के बारे में और बात करें, इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पार्किंसंस आदि आगर है क्या, आखिर है क्या। पार्किंसंस एक मस्तिष्क यानी न्यूरो संबंधी बीमारी है। किसी कारण से मस्तिष्क के सबस्टांशिया नाइग्रा नामक हिस्से में तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने के कारण डोपामाइन के निर्माण में कमी या समस्या होने पर ये रोग होता है।
यस, डोपामाइन इट डिक्रीजेस, राइट?
जी बिल्कुल,
प्रोडक्शन एक्चुअली। एंड नाउ लेट्स टेक आवर लिसनर्स सरफिरोजी वे बैक इन टाइम। फर्स्ट लेट्स एक्सप्लोर इट्स हिस्ट्री अ बिट। इंग्लिश सर्जन James Parkinson, he wrote and published the essay on the shaking palsy in the year 1817. Well, James Parkinson, he occupies a unique position in the history of Parkinson's disease. He identified a motor neuro disorder prevalent in older age, the older people. And in his honor, this disease was named as पार्किंसंस डिजीज।
जी बिल्कुल शगुन, और 1997 में यूनाइटेड किंगडम की पार्किंसंस रोग सोसाइटी ने जेम्स पार्किंसंस के जन्मदिन 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में नामित किया। इसके बाद WHO ने मई 1997 में पार्किंसंस रोग पर कार्य समूह की स्थापना की। तब से पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुदाय की बेहतर सेवा करने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है।
Well, Parkinson's disease, the progressive neurodegenerative disorder, this impairs movement and can also lead to immobility and dementia over time. Neurodegenerative diseases, these are conditions that they gradually damage and destroy parts of the nervous system, especially the areas of the brain.
और अपने श्रोताओं को बता दें कि पार्किंसंस रोग आमतौर पर वृद्ध लोगों में होता है, लेकिन युवा लोग भी अब इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिसे यंग पार्किंसंस कहा जाता है। और महिलाओं की तुलना में पुरुष इससे अधिक प्रभावित होते हैं। पिछले 25 वर्षों में पार्किंसंस रोग का प्रसार दोगुना हो गया है।
Well, let's explore the exact cause. But the exact cause of Parkinson's disease, it is not fully known yet, but it is believed that there are a lot of combination of factors that are involved, such as genetic and environmental factors that are involved in this particular disease. And it is primarily characterized by the loss of, as you told, loss of dopamine-producing neurons in the brain, which leads to motor and non-motor symptoms.
जी बिल्कुल शगुन, और इसके लक्षणों की बात की जाए तो धीमी गति से चलना या हाथ पैरों में कंपन, चलने में कठिनाई, मानसिक स्वास्थ्य विकार, सही से नींद ना आना और संवेदी समस्याएं इसके मुख्य लक्षणों में शामिल हैं।
हाँ, causes uncontrollable movements. And let's share some tips here with our listeners. We should always eat healthy food and maintain good hydration. And it should also include plenty of vegetables, fresh vegetables, fruits and fibers in our diet. This can help with constipation, and this is quite common with this particular disease. So always fresh fruits and vegetables.
जी बिल्कुल शेगुन, इसके अलावा इससे इसकी शिकार लोगों को सक्रिय रहने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे लोग रोजाना थोड़ा व्यायाम करें, योग और ध्यान का अभ्यास करें. इसके अलावा शेगुन, सहायता समूह में अगर इसके शिकार लोग शामिल होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक ये एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं.
जी सर फिरोजी, बिकॉज ऑफ दिस particular medical condition, there may be trouble with memory as this disease progresses. So patients, they should always carry an identity card or GPS tracker so they can be tracked in case of emergencies. And caregivers, they must learn more about Parkinson's disease and its treatment. And this is the way you can actively be involved in the patient's care.
भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी.
जी बिल्कुल, अगर ईश्वर को देखना है तो बस अपनी माँ को देख लीजिए. शगुन, माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है. ये ममता का वो सागर है जिसमें भावनाएं हिलोरे लेती रहती है, और जब एक महिला अपार दर्द सहकर एक नई जिंदगी को दुनिया में लाती है तब वो एक ऐसा एहसान करती है जिसकी कीमत जिंदगी भर नहीं चुकाई जा सकती. और दुनिया में माँ और बच्चे के रिश्ते से खूबसूरत शायद ही कोई और रिश्ता हो, और मानना पड़ेगा शगुन शायद ये इकलौता रिश्ता है जो निस्वार्थ होता है, जिसमें किसी लेन देन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है.
ट्रू दैट.
ये रिश्ता प्रेम, स्नेह, देखभाल और विश्वास से बना होता है. शगुन, हम सब जानते हैं कि जब बच्चे को जन्म देने के दौरान जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें बेहद तकलीफ से गुजरना पड़ता है. लेकिन जब वो नन्ही सी जान अपनी माँ की गोद में जाती है तो माँ 9 महीने झेली गई सारी समस्याएं और प्रसव के दौरान हुई सारी तकलीफों को भूल कर उसे गले लगा लेती हैं, और तब से लेकर अपने जीवन के अंत तक माँ बच्चों का मार्गदर्शन करती है, उनके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा उनका साथ देती हैं.
बिल्कुल सर फिरोजी, यू आर राइट अबाउट दैट. मदर्स, दे आर गार्डियन एंजल्स फॉर देयर चिल्ड्रन, ऑलवेज लविंग एंड सपोर्टिंग देम, ऑलवेज नो मैटर व्हाट. एंड शी इज एक्चुअली, वेल यू वर टॉकिंग अबाउट इट, शी इज द फर्स्ट पर्सन वेल अ चाइल्ड सीज आफ्टर बर्थ. सो एवरी यंगस्टर होल्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस इन देयर हार्ट फॉर देयर मदर.
जी बिल्कुल शगुन, लेकिन एक औरत के लिए माँ बनने का सफर आसान नहीं होता. महिलाओं को गर्भधारण के 9 महीनों के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं कई महिलाएं प्रसव के दौरान होने वाली तकलीफों को सहन नहीं कर पाती और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है, और ये एक बड़ी परेशानी न सिर्फ भारत में दुनिया भर में बनी हुई है.
जी.
इसके अलावा हाल ही में माँ बनी महिलाओं में पोस्टपार्टम तनाव भी एक बड़ी परेशानी बना हुआ है. तो कैसे महिलाओं के सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जाए, कैसे ये पक्का किया जाए कि माँ एक सुरक्षित बच्चे को जन्म दें और खुद भी सुरक्षित रहे, इन सभी विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है.
एंड लेट मी टेल आवर लिसनर्स एज वेल दैट नेशनल सेफ मदरहुड डे, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 बाय द व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया. And this date marks the birth anniversary also of Kasturba Gandhi, wife of Mahatma Gandhi. She dedicated her life to the welfare of women and children.
इस वर्ष इस दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य. ये गर्भावस्था के पहले दिन से ही हर माँ के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ये अभियान माताओं और नवजात शिशुओं दोनों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ये देखभाल की कमी के कारण होने वाली मातृ और शिशु मृत्यु को रोकने की दिशा में एक पहल है।
Well, maternal health, it should be focused on very importantly because maternal health, the health of women during pregnancy and childbirth and the postnatal period, these are the three factors, these are the three, I should say, levels of pregnancy. And each stage, this all the stages that I have talked about during pregnancy, during childbirth and the postnatal period, it should be a positive experience and should also ensure that their babies, women and their babies, they reach their full potential for health and well-being. And after childbirth, this should be supervised by qualified and skilled healthcare professionals, and prompt medical attention must be available in case of complications or in the cases of emergencies. Right.
जी बिल्कुल शगुन, और हम देखते हैं कि आज कल जो माएँ जो होती हैं वो वर्किंग भी होती हैं, तो एक छोटा सा योगदान जो हम दे सकते हैं, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अगर हमारे जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, अगर थोड़ा बच्चे के ध्यान रखने में, देखभाल करने में वो थोड़ा योगदान दे दें, क्योंकि माँ के ऊपर इससे दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसको बच्चे का भी ध्यान रखना है, परिवार को भी देखना और अपना जो वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभानी है।
दे हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दैट अर्लियर एज वेल, सो दे शुड definitely take care of the mothers, and recovery of women from childbirth stress and their resumption of work and also family responsibilities, as you are talking about them, they are mainly influenced by factors like work conditions, the timing of return to work, also the work pressure. So this should be cared in, the mother should be cared enough for a very long time, because giving birth in itself is a very, very hard process. But the plight of working mothers in the informal sector, it is even more deplorable. Neither the creche facility nor maternal benefits, they are accorded to them, and low income worsens their condition. Also, I remember a beautiful quote, so let me share it here. A mother is one who can take the place of all others, but whose place no one else can take.
श्रोताओं, अब समय है आपको लेकर चलें देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानें कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। बात कर रही हैं बिहार की। बिहार में नगर विकास और आवास विभाग ने पटना और आसपास के क्षेत्रों के लिए समेकित ठोस अवशिष्ट प्रबंधन परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत ये कार्यान्वित होगा। प्रदेश में ये पहली बार है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी आधार पर बड़े पैमाने पर ठोस कचरा प्रबंधन के लिए काम शुरू किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्र में ठोस कचरा का निस्तारण एक बड़ी समस्या है। एकीकृत प्रबंधन और निस्तारण से कचरा से कंचन बनाने की मुहिम को काफी बल मिलेगा। पटना क्लस्टर के अंतर्गत पटना शहर और आसपास के 11 नगर निकायों को इससे लाभ मिलेगा। इसमें दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवारी शरीफ, संपतचक जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित हो सके इसके लिए केंद्र सरकार ने वायबिलिटी गैप फंड VGF के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने का भी निर्णय किया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत नई तकनीक के उपयोग से कचरा और अपशिष्ट निपटान के लिए काम किए जा रहे हैं। यह उसी का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें कचरा उठाव, गंतव्य तक उसके पहुंचाने की व्यवस्था, मटेरियल रिकवरी केंद्र में कचरा प्रसंस्करण और कंपोस्ट बनाने को शामिल किया गया है। इस परियोजना में 514 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि पटना नगर निगम के लिए बैरिया यार्ड में 1600 टन कचरा का प्रतिदिन निस्तारण और प्रसंस्करण होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह एक प्रकार से कचरा से चमत्कार करने जैसा होगा।
पहली बात बताई कि ये अजूबा चीज है, अद्भुत चीज है, जो पूरे देश में पहला संयंत्र ऐसा बिहार में लगा। कि इसकी सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने दे दी है। दूसरा कि इसमें मेरा बिहार सरकार का पैसा नहीं लगेगा, इस बिना लगे हम चार प्रकार के लाभ को कचरा से करेंगे, मतलब कचरा जिसको हम लोग कहते हैं ना बोलचाल में कचरा, तो कचरे से हम अगर उत्पादन कर रहे हैं ये और चार प्रकार के चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, देश में बिहार पहला राज्य होगा। ये मैं प्रमुखता से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये जो हमारा अनुमान है जिस प्रकार से विभाग के अधिकारी हमारे सीरियस हैं और दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरी प्रक्रिया को कागजी रूप से हम अगले 60 डेज में संपन्न कर लेंगे कि कचड़ा से करके दिखाने का चमत्कार बिहार का नगर विकास आवास करने वाला है।
समय की ठोस अपशिष्ट परियोजना के अंतर्गत 15 मेगावाट के एक बिजली संयंत्र की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा 100 टन प्रतिदिन उत्पादन वाला एक बायो मिथिनेशन प्लांट भी काम करेगा जो बायोगैस के उत्पादन करने में मदद करेगा। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
वेल मूविंग ऑन, द डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स असम यूनिवर्सिटी टुडे स्टार्टेड अ 3-डे इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल आर्काइविंग फॉर द इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। This 3-day international workshop is being organized in collaboration with the Department of Anthropology in University of North Texas, United States of America. The workshop will focus on language documentation and digital archiving using Mukurtu for indigenous communities of North India.
अब बात हरियाणा की। हरियाणा को नशा मुक्त करने और युवाओं को नशे से बचाने की मुहिम के साथ हिसार से ड्रग फ्री हरियाणा के संदेश के साथ चली साइक्लोथॉन को प्रदेश के हर जिले में जोरदार समर्थन मिल रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन रैली को हिसार से रवाना करते हुए कहा था कि ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत निकाली जा रही इस साइक्लोथॉन के संदेश की गूंज प्रदेश के कोने कोने तक जाएगी और युवा पीढ़ी को नशे के विरुद्ध जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। कल ये साइक्लोथॉन नू बल्लभगढ़ होते हुए फरीदाबाद पहुंची थी। इससे पहले पलवल रेवाड़ी आदि जिलों से होते हुए ये यात्रा नू में प्रवेश की थी। आज फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद से साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर आगे के गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, मंत्री राजेश नागर, पूर्व मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवा हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करने के संकल्प के साथ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, देसा माँ देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हरियाणा की शान पहलवानी है, हमारा धाकड़ पहलवान, हमारा धाकड़ जवान, हमारा धाकड़ किसान, यही हरियाणा की पहचान है। इसलिए हरियाणा में नशे के लिए कोई स्थान नहीं है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
Now let's explore what's happening in the business world, and from past many days it's about reciprocal tariffs. The benchmark domestic equity indices today ended on a strong note following pause in reciprocal tariffs. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange Sensex surged 1310 points or 1.77% to close at 75,157. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 429 points or 1.92% to settle at 22,829. The broader market indices at the BSE ended higher. The mid-cap index advanced over 1.8% and the small-cap index jumped 3%. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.4% up at $63.62 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.6% up at $60.47 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 93,720 rupees per 10 grams and silver 999 fine was also trading up at 93,170 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब बात खेलों की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember the great social reformer, Mahatma Jyotirao Phule, who was born on the 11th of April, 1827. He worked towards the eradication of the caste system and educating women. He and his wife, Savitribai Phule, were pioneers of women education in India.
Jyotiba founded Satya Shodhak Samaj in 1873 in Pune to fight for attaining equal rights for people from so-called lower castes and to educate them. The ideals of human well-being, happiness, unity, equality and easy religious principles and rituals form the philosophy of the Samaj. Jyotiba said,
Mere aap se vinti hai ki aap mane Ishwar ek hai aur sare manushya uske bacche hain. मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप अपने और ईश्वर के बीच में किसी को बिचवाई न माने।
The members used to visit villages and perform jalsas to spread the messages of social reformation.
Hey, Surya bada hi nek, deta jo sabko ujala ek, chand bhi hote nahi anek, megh ka jal bhi sabko ek, kyun sab manav ho sab ek.
Phule is regarded as one of the most important figures in the social reform movement in the country. He was bestowed with the honorific title Mahatma by social activist Vitthal Rao Krishnaji Bandekar in 1888. We salute the great Indian.
We also remember freedom activist Kasturba Gandhi, who was born on the 11th of April, 1869, fondly called as Ba by her husband Mahatma Gandhi. She, in Gandhiji's own words, was the epitome of strength, from whom he learned about the practice of ahimsa, the non-violence. Gandhiji wrote,
If anything, Kasturba stood above me, but for her unfailing cooperation, I might have been in the abyss. She stood by me in all my political fights and never hesitated to take the plunge. In the current sense of word, she was uneducated. But to my mind, she was a model of true education. She was a devoted Vaishnav, but she had obliterated all feelings of caste from her mind. She personified the ideal of which Narasimha Mehta has sung in Vaishnav Jan Hymn.
On the evening of 22nd February 1944, Kasturba breathed her last at the Aga Khan Palace, where she was detained with Gandhiji. We salute the great Indian.
We also remember Martyr Faulad Singh, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. A resident of Khandesh, Maharashtra, Faulad Singh took part in attacking the British establishments and seizing their treasuries at a number of places.
He took part in a battle on 11th of April 1858, where he was killed by the company troops in the course of fierce fighting. We salute the great son of the soil.
We also remember independence activist Kapil Deo Singh, a resident of Muzaffarpur, Bihar, who took part in the Quit India movement in 1942.
Kapil Deo was arrested and he died on 11th of April 1944 in prisoner's ward of Patna Hospital. We salute the great martyr.
आज पुण्यतिथि है हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावी लेखकों में से एक रहे उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की। साहित्य में मानव संबंधों की कहानियों की चर्चा हो तो बरबस जो चेहरा सामने आ जाता है वो चेहरा है फणीश्वर नाथ रेणु का।
जी, फणीश्वर नाथ मंडल रेणु वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इन द पोस्ट प्रेमचंद एरा। लेट मी नेम वन ऑफ हिज क्रिएशंस। ही इज द ऑथर ऑफ मेला आंचल, this is regarded as one of the most significant Hindi novel.
फणीश्वरनाथ रेणु को विशिष्ट भाषा शैली ने हिंदी कथा साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया. प्रति परिकथा उपन्यास और मारे गए गुलफाम कहानी, जिस पर राज कपूर अभिनीत प्रसिद्ध फिल्म भी बनी, इसके साथ उनकी ख्याति और बढ़ गई. उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त उन्होंने निबंध, रिपोर्टर राज, संस्मरण आदि गद्य विधाओं में भी लेखन किया. आइए सुनाते हैं तीसरी कसम फिल्म का आपको एक गीत.
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना.
आज जाने माने हिंदी लेखक विष्णु प्रभाकर जी की भी पुण्यतिथि है. इनकी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं.
Well, he had several short stories, novels, plays and travelogues to his credit. His works have elements of patriotism, nationalism and the messages of social upliftment.
विष्णु प्रभाकर का रेडियो में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. इन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर नाट्य निर्देशक के रूप में काम किया और कई रूपक, एकांकी और नाटक लिखे. आइए आपको प्रसार भारती के अभिलेखागार से सुनाते हैं कि विष्णु प्रभाकर ने रेडियो से टेलीविजन तक का सफर कैसे तय किया.
टेलीविजन से हमारा संबंध शुरू से रहा. रेडियो से तो था ही हमारा आज़ादी के बाद. आज़ादी से पहले भी कुछ रहा. आज़ादी के बाद तो 47 से तो कह नहीं सकते हमने कितना काम किया है, बड़ा मुश्किल है. लेकिन जब टेलीविज़न शुरू हुआ तो हम लोग, मैं रेडियो में काम करता था. ये 55 की बात है, 55-56 की. ये टेलीविज़न एक्सपेरिमेंटल फिलिप का आया था. अब फिलिप के भी मैं इंटरव्यू करने के लिए जाया करता था. उसके बाद फिर एक्चुअली हमारे सरकारी टेलीविज़न आया तो उसमें शुरू में कमलेश्वर और हम उससे जुड़े, और कोई था नहीं यहाँ. तो इतना काम हमने शुरू में किया टेलीविज़न पर कि इंटरव्यू करना, ड्रामा लिखना, रिकॉर्ड करना, सारा एक तरह से घर की तरह से हम काम करते थे.
Well, listeners, today we are also remembering Jemini Roy, painter. Today, it's his birth anniversary. Well, Jemini Roy is remembered for forging a unique Indian aesthetic for modern art by bringing together elements of traditional Bengali folk art and Kalighat Patachitras, rendered in clean lines and earthy colors. Well, he has been honored with the award of Padma Bhushan in the year 1954. Today, we are also remembering Joel Grey, actor, singer and dancer. Well, he has won many accolades and his performances in the cabaret stage musicals are the most revered.
आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले तानसेन और सुपरस्टार कहे जाने वाले के कुंदन लाल सहगल की भी जयंती है. केएल सहगल का नाम हिंदी फिल्मों में एक बेमिसाल गायक के रूप में विख्यात है. केएल सहगल ने अपना पहला गीत 12 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के दरबार में गाया. 13 साल की उम्र में जब इनकी आवाज में बदलाव आने लगा तो इन्हें अपनी आवाज बदलने और खोने का डर सताने लगा, जिसके बाद इन्होंने कई दिनों तक किसी से बात ही नहीं की. साल 1932 में फिल्म मोहब्बत के आंसू से इन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा. इस साल इन्होंने दो और फिल्मों सुबह का सितारा और जिंदा लाश में भी अभिनय किया.
एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाज सुमे सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा. सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला.
Well, K.L. Sehgal's unique voice quality, which was a mixture of baritone and soft tenor, was the benchmark for most of the singers who followed him. And it remains a gold standard even today, shining through very early and practically primitive recording technology. We have another song in his voice. Let's listen to that now.
जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के
क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया।
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।